समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और डेडलाइन में बात करेंगे हम हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर। बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या है आज इनका जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं हिमांशु कांडपाल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनोज सिंह राणा। मनोज, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार हिमांशु, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स हू हैव ट्यून्ड इनटू आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। इन दिस प्रोग्राम, एज हिमांशु मेंशन्ड, वी विल प्रोवाइड यू राउंड अप ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज। वी विल ऑल्सो टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे। एज यू नो, इट इज द 30th ऑफ मार्च, the penultimate day of March. So let's begin with the headlines. President Draupadi Murmu confers Bharat Ratna on former Prime Ministers P.V. Narasimha Rao and Chaudhary Charan Singh posthumously. Agriculture scientist M.S. Swaminathan and former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur also conferred with the highest civilian honour.
Bharat ka videshi mudra bhandar 642 arab dollar se adhik ke uchchatam star par.
Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh receive fresh snowfall. IMD forecasts intense rainfall and thunderstorms over northeast India from today.
Miami Open tennis mein Rohan Bopanna aur Matthew Ebden ki jodi purush doubles ke final mein aaj khelegi.
And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. And now it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level, or we discuss the day which is of significance. And so today, we'll talk about the World Bipolar Day. World Bipolar Day is celebrated on March 30th to raise awareness and eliminate the stigma associated with this lifelong mental health condition affecting millions worldwide. Well, Himanshu, our listeners must be wondering why it is celebrated on March the 30th. Well, it is because it is the birthday of Vincent van Gogh, who was posthumously diagnosed as probably having bipolar disorder. And in fact, we are well aware that it is a brain disorder that causes unusual shifts in mood, energy, activity levels, and the ability to carry out day-to-day tasks. And in fact, everyone goes through probably some sorts of normal ups and downs every day, but the symptoms of bipolar disorder are severe and different.
जी बिल्कुल, और आज 30 मार्च, और 30 मार्च को जन्मदिन होता है महान चित्रकार विंसेंट वैन गॉग का, जैसे कि आपने बताया उनका जन्मदिन, और उनको ही समर्पित है ये विश्व द्विध्रुवी दिवस यानी कि विश्व बाइपोलर दिवस। और खुद विंसेंट वैन गॉग जो है इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन इसका पता काफी बाद में चला। और इसका लक्ष्य जो विश्व बाइपोलर दिवस है कि दुनिया में इस बीमारी से जुड़े कलंक को खत्म करना है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 150 में से हर एक व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसमें से 70% का इलाज भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि विश्व जो बाइपोलर दिवस है, तो बाइपोलर जो एक डिसऑर्डर है वो क्या चीज है? अगर हम देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले मैनिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता था। एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति का मूड, एनर्जी और काम करने की क्षमता में तेजी से बदलाव आता है। बाइपोलर परिवार में भी चल सकता है। अगर मां बाप दोनों को बाइपोलर है तो बच्चों में भी इस स्थिति का खतरा 40% बढ़ जाता है, यानी कि ये हेरिडिटरी है, अनुवांशिक है। ट्रॉमा, तीव्र तनाव या फिर नशे की लत बाइपोलर का जोखिम बढ़ाते हैं। इसलिए अगर कोई भी इन रिस्क फैक्टर से गुजरा है, और नींद न आना, आत्महत्या का ख्याल आना, अचानक वजन बढ़ जाना या कम हो जाना जैसे लक्षण महसूस करता है, तो उसे फौरन अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
दैट्स राइट, एंड अनफॉर्चुनेटली हिमांशु, देयर इज अ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद दिस इलनेस व्हिच हैज लेड टू अ बैरियर टू केयर एंड इन फैक्ट कंटिन्यूज टू इम्पीड टाइमली डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इन फैक्ट द मोटो फॉर दिस ईयर, दैट इज वर्ल्ड बाइपोलर डे 2024, इज strength for today and hope for tomorrow. And in fact, there are extreme mood swings that include emotional highs and lows, as you just mentioned. And these mood swings can range from feeling excessively energetic, euphoric, irritable during manic episodes to experiencing profound sadness, hopelessness, or even loss of interest during depressive episodes. So educating yourself about this condition is crucial to providing informed support and reducing stigma.
जी बिल्कुल. और बाइपोलर कई लोगों के जीवन की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसमें जिंदगी जो है हर एक चीज को एक एक्सट्रीम में वो लोग मानते हैं, यानी कि या तो बिल्कुल ब्लैक है उनकी जिंदगी या तो बिल्कुल व्हाइट है. यही वजह है कि ब्लैक एंड व्हाइट धारियों वाले रिबन को वर्ल्ड बाइपोलर डे के सिम्बल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इस स्थिति में व्यक्ति में दो तरह के स्टेजेस देखे जाते हैं, पहला डिप्रेशन और दूसरा मैनिया. डिप्रेशन होने पर व्यक्ति दुखी हो जाता है और मैनिया में जरूरत से ज्यादा खुश हो जाता है. उस दिन को मनाकर हम लोग उन लोगों के या जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उनके परिवेश के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें इन दो चरम सीमाओं के बीच में देखने में मदद करते हैं. और बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? जैसे कि बताया कि मूड, एनर्जी और रोज की एक्टिविटी को प्रभावित करती है. या तो जरूरत से ज्यादा खुश होता है या जरूरत से ज्यादा दुखी होता है. और जब बहुत ज्यादा खुश होता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, तो उसे नींद लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है, स्वभाव बेहद पॉजिटिव रहता है. और अगर डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान व्यक्ति दुखी होता है, उदास होता है, निराश होता है, लेस एनर्जेटिक होता है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है, उन गतिविधियों में रुचि की हानि का अनुभव हो सकता है जो उन्हें पहले पसंद थी, और इस दौरान कई लोगों को आत्महत्या के ख्याल भी आते हैं और खुद को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं.
एंड सम ऑफ दीज अदर सिम्टम्स कैन ऑल्सो बी रैपिड स्पीच and racing thoughts, probably increased energy and less need for sleep, excessive happiness, hopefulness and excitement, increased impulsivity and poor judgment, such as suddenly quitting your job, making grand and unattainable plans, reckless and even risk-taking behavior, such as drug and alcohol misuse, feeling like you're usually unimportant, talented or powerful, psychosis, experiencing hallucinations and delusions, in the most, of course, severe manic episodes. So supporting a loved one with bipolar disorder can make a significant difference in their well-being, Himanshu.
जी बिल्कुल. और सबसे पहले तरीका हमारा बात यह है कि उनकी समस्याओं के बारे में जानें और उनसे इस पर बातचीत करें और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है कि देखें कि उदाहरण के तौर पर कि व्यक्ति कितने घंटे सो रहा है, हर वक्त थकान महसूस कर रहा है या नहीं, उसके व्यवहार ज्यादा गंभीर है या नहीं, और उनसे वो अपने पर्सनल या अनुभवी अपने अनुभवों को वो शेयर करता है या नहीं. और ये चीजें तो हुई कि हम डिसऑर्डर जो है बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति को कैसे पहचाने और उसकी मदद करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर ट्रीटेबल कंडीशन है या नहीं.
एंड राइट, एंड देयर इन फैक्ट 9 वेज दैट द वर्ल्ड बाइपोलर फाउंडेशन मेंशंस इन विच यू कैन सपोर्ट योर फ्रेंड्स और योर अक्वेंटेंसेस इन केस यू नो समवन इज सफरिंग फ्रॉम bipolar disorder. First, educate yourself, understand what are the symptoms, triggers and treatment options. Encourage treatment, encourage your loved one to seek professional help from a psychiatrist or therapist. Be patient and understanding, because bipolar disorder can be challenging to manage and mood swings can certainly be unpredictable. Maintain open communication, keep your communication lines open and make a note of the triggers. Help your loved one identify and manage these triggers that may worsen their symptoms and offer practical help, encourage healthy lifestyle choices as well, such as maintaining regular exercise, balanced nutrition, adequate sleep and stress management techniques, and even mindfulness or relaxation exercises, promote social support and taking care of yourself.
जी बिल्कुल. और बाइपोलर डिसऑर्डर को दवाइयों, थेरेपी और लाइफस्टाइल में बदलाव की मदद से इनको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन ये क्रॉनिक स्थिति है. अगर इसका इलाज न किया जाए तो इससे किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है. और इसमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उनको और उनके आसपास के लोगों को, और उचित देखभाल और मदद हासिल करने से उन्हें रोका जा सकता है.
Well, we are also remembering Vaikom Satyagraha, which is completing 100 years today. Running for over 600 days, the Vaikom Satyagraha was the first among many temple entry movements in India. Amidst the national movement, it foregrounded the issue of untouchability and caste oppression. The name Vicom comes from a temple town in the princely state of Travancore that started the non-violent agitation on March the 30th, 1924 and went on till the 23rd of November 1925.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। श्रोताओं, आपके अच्छे काम का संज्ञान जरूर लिया जाता है। छत्रपति संभाजी नगर निगम के कुछ सफाई कर्मियों ने इसी बात को अनुभव किया है। एक रिपोर्ट।
छत्रपति संभाजी नगर में ड्रेनेज सफाई करने वाले 10 मजदूरों ने नगर निगम की पहल से स्वच्छता रत्न सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुछ साल पहले काम करना शुरू किया। वर्ष 2021 में इस ग्रुप का राष्ट्रीय योजना नागरी उपजीविका अभियान के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट खुलवाया गया। ग्रुप को बैंक से 10 लाख रुपए का लोन मिला, जिससे इस ग्रुप ने सफाई के लिए कुछ मशीनें खरीदी। इससे इनकी काम करने की पद्धति में बदलाव हुआ। कम समय में ज्यादा काम होने लगा, जिससे आमदनी बढ़ने लगी। रहन सहन और पहनावे में सुधार हुआ, साथ ही समय में भी बचत होने लगी। स्वच्छता रत्न ग्रुप की इस उपलब्धि को विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने भी सराहा है। इस बारे में छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम के उप आयुक्त अंकुश पांडे ने और अधिक जानकारी दी।
यहाँ पे 10 लोग जो सफाई कामगार थे, वो पहले छोटे छोटे काम करते थे। उन्होंने एक साथ आकर एक गुट बनाया, जिसमें महानगर पालिका ने उनकी हेल्प की। NALM जो कि राष्ट्रीय जीवन अभियान अंतर्गत उनको कर्जा दिलाया, बैंकों से उनको 10 लाख और दिलाए, जिसमें से उन्होंने यंत्र सामग्री खरीदी और उन्होंने कॉरपोरेशन के अंडर जितने सोसाइटी थे बड़े बड़े, उनसे टाइप करवाया। उसके अंतर्गत ये काम को महानायक अमिताभ बच्चन को मुंबई बुलाकर भेंट की और भेंट करके उन्होंने उनको अपनी तरफ 10 यंत्र सामग्री और वाहन दिलाए, जिससे कि वो और अच्छा काम कर सके। अभी ये बचतगट जो पहले उनको रोजाना 100 रुपए के करीब मिलता था, अब उनको अच्छे पैसे मिल रहे, जिससे कि उनमें सुधार हो रहा है और वो आत्मनिर्भर बन गए। तो हमारे कमिश्नर सर जी श्रीकांत सर, इनके मार्गदर्शन में और भी बचत गटों को आत्मनिर्भर करने की हमारी कोशिश जारी है।
परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
आमतौर पर अगर कोई पता पूछने आता है तो घर के पुरुष मुखिया का नाम पूछा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात के कच्छ जिले में 3 गांव ऐसे हैं जहां घर और गली को बेटी के नाम से जाना जाता है। और ये बात सुनकर निश्चित तौर पर श्रोताओं आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम सब अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। भुज तालुका का कुखमा, मांडवी तालुका का मस्का और नखताराना तालुका का अंगिया गांव, इन तीनों गांवों ने लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सराहनीय प्रयास किया है। हमारे भुज संवाददाता भरत देवमणि की रिपोर्ट।
बात करते हैं मांडवी तालुका के मस्का गांव के बारे में। मस्का गांव के हर घर के पास बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का लोगो लगा हुआ है, जिसके नीचे बेटी का नाम लिखा हुआ है। जिस तरह हम नेम प्लेट लगाते हैं, यहां भी लोगो लगाया जाता है। यहां अच्छी पढ़ाई करने वाली बेटी के नाम पर घर, सड़क और गली के नाम रखे गए हैं, ताकि बेटी को भी प्रोत्साहन मिले। एक तरह से कहा जा सकता है कि सड़क पर पहचान बनाने की होड़ मची है और बेटियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छे काम करने में आगे बढ़ने का जुनून मिलता है। मस्का गांव के सरपंच कीर्ति भाई गोर का कहना है, जैसे कि मस्का गांव के जागरूक नागरिकों को इस बात की जानकारी मिलती है तो वे भी अपने घर का नाम बेटी के नाम पर रखने के लिए अधिक उत्साहित हो जाते हैं।
हमारा गांव एक आदर्श सांसद गांव में भी सिलेक्ट हुआ है। हमारे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण अंतर्गत घर की पहचान बेटियों के नाम, क्योंकि एक समय था जब घर की पहचान पुरुषों के नाम से हुआ करती थी, तब हमने कुछ अलग से तय किया कि घर की पहचान बेटियों के नाम से हो। इस घर में बेटियां हैं, उस घर में हमने उनके घर के बाहर नेम प्लेट बेटियों के नाम से रखी। बहुत से घर तो कुछ ऐसे थे जिनके घर में बेटियां नहीं थी, बहू थी, उस बहू के नाम से भी हमने उस घर के बाहर नेम प्लेट लगवाया। और खास तौर पर ये कार्य महिला सशक्तिकरण अंतर्गत किया गया है और हमारे यहाँ बालिका पंचायत की भी रचना की गई है, जिसके सरपंच भी बालिका है। ज्यादा जो पढ़ी लिखी लड़कियां बेटियां हैं उनके नाम से वो शहरी गली का नाम दिया गया है। ये हमने 2018-19 में ये कार्य हमने स्टार्ट किया था।
अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी वाले भूज तालुका के कुमका गांव के घरों और सड़कों का नाम बेटियों के नाम पर रखा गया है। लड़कियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2018 में आयोजित ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया था। कुकमा गांव की पूर्व सरपंच कंकुबेन बुनकर कहती है, मुझे ज्यादा शिक्षा नहीं मिली, यही कारण है कि मैं शिक्षा का मूल्य जानती हूँ। बेटियां पढ़ेगी तो इससे न सिर्फ उनका भला होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षा के संस्कार मिलेंगे। फिलहाल कच्छ के इन तीनों गांवों को देखकर दूसरे गांव भी प्रेरणा ले रहे हैं और इस दिशा में कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं। परिक्रमा के लिए परेश मारू के साथ मैं भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, भुज।
Well, it's the election season, and in view of the upcoming Lok Sabha election, we present you a capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats, and other relevant facts by our correspondent. First, let's go to the Union Territory of Ladakh, which will be undergoing first independent polling for a single seat, having previously been a constituency under the Jammu and Kashmir state. The voting for the Lok Sabha elections in Ladakh is scheduled to take place during the fifth phase of the polls on the 20th of May. More from our correspondent.
The voting for 2024 Lok Sabha elections in Ladakh is scheduled to take place during the fifth phase of the polls to elect its lone member in the parliament. April 26 is the notification date for the Ladakh Lok Sabha seat. The last day for filing nomination is May 3rd and the last day for withdrawal of nomination is May 6th. Ladakh holds the distinction of being India's largest constituency in terms of area. Strategically, it shares borders with Pakistan along the line of control and China along the line of actual control. Bharatiya Janata Party and Indian National Congress are the two main national parties contesting for lone seat of Ladakh, but none of the parties have announced their candidature till date. The Ladakh Lok Sabha seat is spread over Leh and Kargil district and has total number of 182,571 electors, out of which 91,703 are male voters and 90,867 are female voters. For these voters, the Ladakh administration has set up 577 polling stations. Special arrangement like pick and drop and request for wheelchair from the Saksham app are made available for Divyang and 85 plus electors of Ladakh parliamentary constituency. These voters can also avail voting from home facility. The Chief Electoral Officer UT Ladakh is arranging various programs to spread awareness amongst the voters in general and first time voters in particular. For Akashwani News, this is Phunsuk Wangmo reporting from Leh, Ladakh.
Well, from the Union Territory of Ladakh, let's go to the state that literally means jeweled land. Yes, Manipur, where the State Election Commission has completed all preparations to ensure free and fair polls for two seats of Manipur parliamentary constituencies. On the 19th of April, voting will be conducted in the 47 state assembly constituencies, including 15 assembly constituencies which come under Outer Manipur Parliamentary Constituency. The voting for the remaining 13 state assembly constituencies of Outer Manipur Parliamentary Constituency will be held on the 26th of April. More than 20,26,000 voters, including 239 transgender voters, will cast their votes for two seats. We have more from our Imphal correspondent.
In Manipur, the voting will be conducted at 2,955 polling stations spread across the state. Around 34,700 first-time voters are also ready to exercise their voting rights this time. In the last election, the voting percentage of both the Manipur parliamentary constituencies crossed 80%. This year also, the political parties and candidates are engaging to woo the voters and the voting percentage is expected to be high. The political party INC fielded candidates in both outer and inner Manipur parliamentary constituencies, while BJP fielded State Education Minister Thongnaojam Basantakumar from inner Manipur parliamentary constituency. The party has announced that BJP will support two Naga People's Front candidates in outer Lok Sabha seat of Manipur. JJ Thakrom, Akashvani News, Imphal.
Now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Rajasthan Divas is celebrated on the 30th of March every year. The state was formed on March the 30th, 1949, when Rajputana was merged into India. Jaipur, being the largest city, was declared as the capital of the state.
After the independence of India, the task of uniting India was undertaken under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. On the 17th of March 1948, Indian government took over the supervision of Bharatpur and Alwar states as the rulers failed to uphold peace in the riot-affected princely states. Neighbouring regions of Karoli and Dholpur also agreed to come together to form what was known as the Matsya Union.
On March the 25th, 1948, 10 more states, namely Kushalgarh, Banswara, Kota, Bundi, Jhalawar, Tonk, Shahpura, Pratapgarh, Dungarpur and Kishangarh of the southern and southeastern Rajputana joined together to structure another union that is named East Rajasthan. Subsequently, the Udaipur state, Mewar, also got united in Rajasthan Union on April the 18th, 1948. The name was then changed to United Rajasthan. On March the 30th, 1949, four more states, viz. Jodhpur, Jaipur, Bikaner and Jaisalmer, joined this integration and the region came to be known as the Greater Rajasthan. The principalities of Nimra and Lava also joined the integration. Thus, March the 30th came to be celebrated as the Rajasthan Divas.
On the 15th of May 1949, the Matsya Union was amalgamated into Greater Rajasthan, and thereafter the confederation was named as the United State of Greater Rajasthan. Sirohi State joined the federation on the 26th of January 1950, which got the name United Rajasthan. On the proposal of the State Reorganization Committee, Ajmer-Mewar region was also fused with Rajasthan in November 1956 and thus emerged the contemporary state of Rajasthan.
We also remember freedom fighter Karim Khan, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. A resident of District Karoli, Rajasthan, Karim Khan was the younger brother of Mehrab Khan, a prominent leader of the independent activists in Kota. He was involved in the attack on the political agency Kota on the 15th of October 1857, in which Captain C. E. Burton, the political agent, and his two sons were killed. He fought against the British forces on the 30th of March 1858, was captured, and later hanged by the British troops. We salute the great martyr.
We also remember freedom fighter Surendranath Nag, who was martyred on the 30th of March 1943. Nag was born on the 23rd of May 1917 at Aberdeen, Port Blair in the Andaman Islands. He used to work as sub-assistant surgeon under the British administration, but later joined the Indian Independence League and worked for supporting it financially. He was arrested on the 22nd of January 1943 on the charge of spying and imprisoned in cellular jail. He was shot dead in the Andaman Islands on the 30th of March 1943. We salute the great martyr.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया।
In Miami Open Tennis top seed Indo-Australian pair of Rohan Bopanna and Matthew Ebden will play the men's doubles final against the second seeded pair of Austin Krajicek of America and Ivan Dodig of Croatia in Florida tonight. In women's singles, fourth seeded Elina Rybakina will lock horns with unseeded Danielle Collins in the final later tonight. In men's singles, second seed Jannik Sinner will face 11th seed Grigor Dimitrov in the men's singles final on Sunday.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है आज जन्मदिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं किसे?
संबानंद मुनप्पा पंडित और एस एम पाटिल, एन इंडियन पेंटर फ्रॉम कर्नाटका, डाइड ऑन दिस डे इन 1993। ही इज पॉपुलर इन द स्कूल ऑफ रियलिज्म, स्पेशली इन हिज पोर्ट्रेट ऑफ रोमांटिक कैरेक्टर्स लाइक राधा कृष्ण, नल दमयंती एंड विश्वामित्र मेनका। मोस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ऑसिलेटेड बिटवीन इवेंट्स फ्रॉम क्लासिकल इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द रामायण, द महाभारत, द पुराण एंड द कंटेम्पररी सिनेमा ऑफ हिज टाइम्स। He was influenced by the works of Raja Ravi Verma and N.V. Dhurandhar.
और आज पुण्यतिथि है आनंद बख्शी की। वे हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध गीतकार थे। उन्होंने फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गीत लिखे जो आज भी हमारे दिलों में रचे बसे हैं। 1972 में आई फिल्म मोम की गुड़िया में पहली बार उन्हें गीत गाने का लिखने का मौका मिला और उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत दिए, जैसे फिल्म कटी पतंग, बॉबी 1973 में आई बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, अमर अकबर एंथोनी, एक दूजे के लिए, हीरो, कर्मा, रामलखन, खलनायक, ताल, यादें जैसी कई फिल्में हैं। आनंद बख्शी 40 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए और 4 बार उन्हें यह पुरस्कार मिला। 1977 में फिल्म आई थी अपनापन, जिसका गाना था आदमी मुसाफिर है, और 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए, तेरे मेरे बीच कैसा है ये बंधन, इस गाने के लिए। 1995 में तुझे देखा तो ये जाना सनम फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और 1999 में फिल्म ताल का ये गाना, इश्क बिना क्या जीना यारों, इन चार बार इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। आनंद बख्शी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी हमारे दिलों में रचे बसे हैं।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाते, जिंदगी के सफर।
मनोहर श्याम जोशी की आज पुण्यतिथि है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, फिल्म कटकथा लेखक थे, और उन्हें दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों हम लोग, बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की पटकथा लिखी। हम लोग के कारण वे सबके दिलों की धड़कन बन गए। 2005 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से अलंकृत किया गया।
टॉकिंग अबाउट द बर्थ एनिवर्सरीज, विंसेंट वैन गॉग, वी मेंशनड डियर लिसनर्स, द एमिनेंट डच पेंटर, जनरली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट आफ्टर रेम्ब्रांड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, was born on this day in 1853 in Zundert, the Netherlands. The striking color, emphatic brushwork and contoured forms of his work powerfully influenced the current of form of expressionism in modern art. He gained prominence after his death when his work sold for record-breaking sums at auctions around the world. His iconic works, Himanshu, include Starry Night, A Pair of Shoes, Wheat Field with Cypresses, Irises, and Still Life Vase with 14 Sunflowers. Also, Nagesh Kuknur was born on this day in 1967. He is an Indian film director, producer, screenwriter, and actor known for his works predominantly in Hindi cinema and few Telugu films. Kuknur has received 7 international awards and 2 national film awards for his works. He is known for his works in parallel cinema such as Hyderabad Blues, Rockford, Iqbal, Door, Aashayan, Lakshmi, and Dhanak, which won the National Award, Film Award for Best Children's Film. In 2006, he bagged the National Film Award for Best Film on Other Social Issues for directing Iqbal. Let's listen to this song from the movie Iqbal.
Iqbal.
हर कोशिश में हो बार बार।
और आज देविका रानी का जन्मदिवस है। वे हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। कुल उन्होंने 15 फिल्मों में काम किया, जैसे कि कर्मा उनकी एक फिल्म है, अछूत कन्या एक उनकी फिल्म है, और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब साल के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, अब समय नहीं है कि इस कार्यक्रम में आपको ज्यादा जानकारी दें, समय हो चुका है आपसे अनुमति लेने का। तो अनुमति दीजिए हिमांशु कांडपाल और मनोज सिंह राणा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।